Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask ki jihad ke teen levels hote hain. Firstly, to nafs ke khilaf, dusra dawa karna aur teesra jaise jihad bhi sabrullah. To isme hum auraton ka kitna role ho sakta hai? And please sir, agar ho sake to yahan se bhi do questions puche jaye because we also want to ask. Thank you.
میں نے سوال کیا کہ جہاد کے تین لیول ہوتے ہیں، ایک جہاد نفس، ایک دعویٰ، ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے، ذہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے، تین، چار، کوئی دس، کوئی پندرہ، کئی درجے. لیکن یہ تین کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے، اس میں بہنوں کا کیا رول ہے، کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے، وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے، وہ مرد عورت ہو، کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ اعتماد کرو، اللہ سے دور جاؤ، تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال شیطان فرمائے گا ایجاد کرنے کی ضرورت کیا، سر ڈھکنے کی کیا ضرورت، بدن رکھنے کی کیا ضرورت، اور جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے، یہ شیطان بتا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم اٹھا کے تو صرف دکھا سکتا ہے وہ چہرہ اور یہ، تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے، خواتین کو بھی، دونوں کو. اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں، اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہادی ہے، اور کئی بار جہاد نفس بھی کہنا ہے نا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے، خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں خواتین نے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے، دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں، ہمارے ادارے میں، اسلام اسٹڈیز فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ، خصوصاً خواتین کے لیے، اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں، 10 مقرر ہیں، 10 کم از کم. جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں، ہندوستان کے دیگر شہروں میں، ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے ہیں، خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے، نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.net، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.net، وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے کتاب فی سبیل اللہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہیں پانی دیا، انہیں فرسٹ ایڈ کیا، مرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس میں، جس کا ذکر ہے، جنگ احد کے درمیان جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نفیسہ رضی اللہ عنہ، اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ خواتین بھی تھی، صحابیہ تھی جن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس میں جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں، اور وہ گھائل ہوئی، اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کی. تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی، عام طور پہ مرد کو اللہ کا زیادہ طاقت دی، وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے، لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں جب ضرورت ہے، فرسٹ ایڈ میں، مرہم پٹی کرنے پہ، اور ضرورت پڑی کہ جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی، تو یہ بھی مثال صحیح بخاری میں ہے، تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے، اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے.
Assalamualaikum डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद जियाउल्लाह खान मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये आलम इंसानियत के लिए बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द फोर कंडीशन इन दिस सूरह आर नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वामिल सालिहात के लिए वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये शर्त सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहां आपसे ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि मंद आल द मुस्लिम्स इतने ज्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर है, अल्लाह के अहकाम से दूर है। अगर उनको अल्लाह के इन अहकाम पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक आर नॉट।
भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते हैं उनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाम आदि मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लामी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाम भी कर रहा हूं दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह इंशाल्लाह एक खुसूसन वशिष्ट है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लामी मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है। ये अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह सुबहाना व ताला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये जिंदगी है आखिरत के लिए इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को प्रमाण करें।
दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है, मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब आपसे मिलावा वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने बयान बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेरिज्म के लिए भी एक साथ मसूरात से क्वेश्चन आया था उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेरिज्म बना के और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं। और मेहरबानी होकर दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए।
एक सवाल भाई साहब, एक सवाल शुरू ले उसके भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में जवाब किया ही नहीं, जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, उस सवाल में ये था कि जो WDC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है लेकिन जिहाद फिर से भी शैतान है। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं, जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे हो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। तीन सवाल, एक सवाल के तीन से मैंने पहले का सवाल जो दे चुका हूं शायद आपने नहीं सुना कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है कि नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं, आप मिले होंगे, मैंने मिला। आप अगर देखो मुझे कहने के लिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज मालूम पड़ती है खुसूसन अगर फासिक के जरिए है तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं जो ये सीएनएन कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो नाम में ओसामा बिन लादेन से मिला तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम, अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना, तो आखिर दिल्ली में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी ना पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या कुरान हदीस की रोशनी में है कहने। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर पहले साल 2003 में तकरीबन एक साल पहले गया था, वहां भी मैं मुझे ये पता नहीं कि आप देखते हैं कि अलग अलग लोग कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं वो भी सही होगा वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाति फायदे का जाति फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है, तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग पे कुरान हदीस पे अमल कर रहे कहने आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में ये कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं अफगानी लोग क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता, मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावत मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाइत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं सीएनएन के अंदर कि कई बार बीबीसी से दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खातून को मारते हैं जालिम लोग, क्योंकि दाई होने को होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था, वहां एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे, बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है, तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसन तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते हैं, हमारे लिए जो अजम है हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना खतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो अमेरिटी का एमराटी यूएई का खतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का खतरा बांधने का तरीका अलग है, वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है, वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोगों को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग के बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक एक रिपोर्टर जिसका नाम है जॉन डेडली। जॉन डेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जो जाती है ब्रिटिश न्यूज़पेपर भेजती है जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे। भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उसको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं।
किधर रही?
तो जॉन रेडली जो थी, जॉन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है, एक बार एक दिन उसका और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है, एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका रास्ता साफ हो जाता है तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, छह दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर देंगे, शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से अटका देंगे। और एकदम डरी होती है, एक घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता, वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। एक घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है, फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार को बोल ही नहीं है, एक घंटा तक कि मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे, वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है, जैसा स्कर्ट हथा उठाती है तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते भाग जाते हैं। तो वो कहती है अपने तकरीर में तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं, वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शाम के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की छह दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जो आपकी नशिश में, क्या आपको लगता है कि अलकायदा ने डब्ल्यूटीसी को गिराया, तो यूएन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अलकायदा मौजूद नहीं है, उसका कहना मेरा कहना है। तो ये और जब उसे आजाद किया जाता है छह दिन के बाद और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उनने क्या इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा की थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है।
लेकिन उससे पहले मैं एक ऐलान करता हूं कि हमारे वॉलंटियर्स अपने अपनी जिम्मेदारियों की जगहों पर पहुंच जाएं। मौलाना अहसन जमील साहब,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। من يطع رسول فقد اطاع حقیقت تیری چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب قسمت ان کا ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ موقع پر میں اپنی طرف سے، مجلس استقبالیہ کی طرف سے،
جناب سلیم صاحب کانپور کے، وہ کہیں بھی ہوں اسٹیج کے پیچھے آ کر سعید صاحب سے فوری ملاقات کر لیں۔